अगर एक पल के लिए ये कल्पना की जाए कि एक बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक दस्तावेज सामने रखा है, पन्ने पलटे जा रहे हैं और अचानक एक ही ऐतिहासिक घटना के दो बिल्कुल अलग अलग विवरण दिखाई देते हैं।
हाँ, जो कि काफी चौंकाने वाला हो सकता है।
बिल्कुल, ऐसे में किसी भी आम पाठक के मन में पहला सवाल यही आएगा ना कि क्या ये उस दस्तावेज को संकलित करने वाले किसी संपादक की बहुत बड़ी लापरवाही है, या फिर मतलब सतह के नीचे कोई ऐसी गहरी कहानी छिपी है जिसे पहली नजर में पकड़ पाना मुश्किल है। मैं तो यही सोचूंगा।
ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इतिहास और प्राचीन साहित्यों का गहराई से अध्ययन करने वाले विद्वानों को मतलब लगातार परेशान करता रहा है।
हाँ, जाहिर है,
क्योंकि मानव मस्तिष्क की फितरत ही ऐसी है, है ना? जब हम चीजों को बहुत ही सतही तौर पर देखते हैं तो विरोधाभास या गलतियां बहुत आसानी से नजर आ जाती हैं।
हाँ, हम तुरंत गलतियां पकड़ लेते हैं।
बिल्कुल, लेकिन जब उस युग की भाषा, संस्कृति और विचारों की गहराई में उतरा जाए ना, तो अक्सर ये पता चलता है कि जिसे हम एक विरोधाभास समझ रहे हैं, वो दरअसल कहानी को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है।
और आज की इस गहन चर्चा, या कहें हमारी इस डीप डाइव का केंद्र भी कुछ ऐसा ही है। हाल ही में डॉक्टर रॉबर्ट वैनॉय के ओल्ड टेस्टमेंट इतिहास के 8वें लेक्चर के कुछ नोट्स और उनके विश्लेषणों पर जब बारीकी से गौर किया गया तो एक बहुत ही दिलचस्प बहस सामने आई।
और वो बहस वाकई बहुत गहरी है,
है ना? मुख्य सवाल यह है कि क्या जेनेसिस 2 यानी उत्पत्ति के ग्रंथ का दूसरा अध्याय सृष्टि की रचना का महज एक दूसरा, या कहें डुप्लीकेट विवरण है? मतलब क्या ये जेनेसिस 1 की कहानी को ही एक अलग तरीके से दोहरा रहा है?
मैं कहूंगी कि ये सवाल सिर्फ एक हाँ या ना का जवाब नहीं मांगता।
अच्छा।
हाँ, क्योंकि इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ना, हमें प्राचीन हिब्रू भाषा की परतों को खोलना होगा, अनुवाद की उस जटिल दुनिया को समझना होगा जहाँ मतलब एक शब्द के कई अर्थ होते हैं।
बिल्कुल, अनुवाद हमेशा पेचीदा होता है।
और सबसे बढ़कर अदन के बगीचे यानी गार्डन ऑफ ईडन से जुड़े जो ऐतिहासिक और रूपात्मक दृष्टिकोण है, उनका बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से विश्लेषण करना होगा।
इस पूरी बहस को समझने के लिए ना, मैं सिनेमा की दुनिया की एक उपमा देना चाहूंगा। ये किसी फिल्म के रीबूट और सीक्वल के बीच के अंतर को समझने जैसा है।
अरे वाह, ये काफी दिलचस्प तुलना है,
है ना? मतलब क्या जेनेसिस 2 पूरी कहानी को फिर से एक नए सिरे से लिख रहा है, जैसे कोई पुरानी फिल्म नए कलाकारों के साथ रीबूट होती है? या फिर ये एक सीक्वल की तरह है जो कैमरे को जूम इन करके किसी विशेष किरदार या घटना पर फोकस कर रहा है?
मैं बता रही थी ना कि ये तुलना इस विषय पर बिल्कुल सटीक बैठती है, लेकिन इस निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले हमें उस प्रमुख सिद्धांत को समझना जरूरी है जो ये दावा करता है कि यहाँ वाकई में दो अलग अलग कहानियां मौजूद हैं।
मतलब आपके कहने का अर्थ है दो अलग अलग रीबूट्स?
बिल्कुल, दो अलग रीबूट्स। एसआर ड्राइवर जैसे 19वीं सदी के आलोचकों और उनके प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री हाइपोथेसिस का विचार यहीं से जन्म लेता है।
अच्छा, हाँ, इस डॉक्यूमेंट्री हाइपोथेसिस के बारे में मैंने काफी सुना है। जो लोग इसे दो अलग अलग निर्माण आख्यानों के रूप में देखते हैं, उनका मुख्य तर्क आखिर किस बुनियाद पर टिका है? मतलब ये हाइपोथेसिस काम कैसे करता है?
अगर इसके मैकेनिज्म को समझा जाए ना, तो ये सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि ये प्राचीन लेख किसी एक व्यक्ति ने एक बार में नहीं लिखे।
तो फिर कैसे लिखे गए?
मतलब ये विभिन्न युगों और क्षेत्रों के अलग अलग दस्तावेजों को मिलाकर गढ़े गए हैं। आलोचक जेनेसिस अध्याय 2 के श्लोक 4 को लेते हैं और उसे शाब्दिक रूप से बीच से दो हिस्सों में बांट देते हैं, 2.4a और 2.4b।
एक सेकंड रुकिए, एक ही वाक्य को ठीक बीच से काट दिया जाता है, ये तो काफी अजीब है।
हाँ बिल्कुल, ऐसा ही होता है। उनके अनुसार श्लोक 4 का पहला आधा हिस्सा पीस अकाउंट या प्रीस्टली सोर्स से जुड़ा है।
प्रीस्टली सोर्स?
हाँ, ये जेनेसिस 1 की शैली है जहाँ सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित है, ब्रह्मांडीय संरचना पर बहुत जोर है और ईश्वर के लिए एलोहिम शब्द का इस्तेमाल होता है।
ठीक है, समझ गया।
लेकिन उसी श्लोक का जो दूसरा आधा हिस्सा है ना, आलोचकों के अनुसार वो जे अकाउंट या जहविस्ट सोर्स की शुरुआत है।
और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाषा में अचानक कोई बदलाव आ जाता है ना?
एकदम सही पकड़ा। श्लोक के इस दूसरे हिस्से से अचानक याहवे एलोहिम यानी द लॉर्ड गॉड शब्द का इस्तेमाल शुरू हो जाता है।
ओह, तो नाम बदल गया।
हाँ, आलोचकों का तर्क है कि ईश्वर को पुकारने के अलग अलग नाम इस बात का पक्का सबूत है कि यहाँ दो अलग अलग परंपराओं या लेखकों के लेखों को बस एक साथ जोड़ दिया गया है।
मतलब एक तरह की दोहरी रचना।
बिल्कुल, वो मानते हैं कि एक लेखक जेनेसिस 1 लिखता है, दूसरा लेखक जेनेसिस 2, और बाद में कोई संपादक उन्हें एक साथ चिपका देता है।
पर यहाँ मेरे मन में थोड़ा तार्किक संदेह पैदा हो रहा है। मतलब केवल एक सिद्धांत को सही साबित करने के लिए एक ही वाक्य को ठीक बीच से चीर देना, ये कितना तर्कसंगत है?
ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है।
है ना? क्या प्राचीन काल में कोई संपादक वाकई इस तरह से काम करेगा कि एक ही वाक्य का आधा हिस्सा किसी और का हो और आधा हिस्सा किसी और का? ये तो ऐसा लगता है जैसे किसी जिग्सॉ पजल के दो अलग अलग टुकड़ों को जबरदस्ती हथौड़े से ठोक कर फिट करने की कोशिश की जा रही हो।
मैं पूरी तरह सहमत हूँ, और यही एक बहुत ही मजबूत आपत्ति है। इसी वजह से डॉक्टर वेनॉय का विश्लेषण इस बहस में एक नई दिशा लेकर आता है।
अच्छा, तो वो नई दिशा क्या है?
वाक्य को बीच से काटने की इस थ्योरी को चुनौती देने के लिए ना, वे अनुवाद की सतह से नीचे उतरकर मूल हिब्रू भाषा के एक खास शब्द पर फोकस करते हैं। यह एक ऐसा शब्द है जो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की चाबी साबित हो सकता है।
अरे वाह, तो वो जादुई शब्द आखिर है क्या?
वो प्राचीन हिब्रू शब्द है टोले दोथ।
टोले दोथ?
हाँ, अंग्रेजी के ज्यादातर अनुवादों में इसे अक्सर जेनरेशंस यानी पीढ़ियां या वृत्तांत के रूप में अनुवादित किया गया है। जेनेसिस 2:4 की शुरुआत ही इस शब्द से होती है, ये आसमान और जमीन की पीढ़ियां हैं।
अच्छा, पीढ़ियां।
अगर पूरे जेनेसिस ग्रंथ पर नजर डाली जाए ना, तो ये शब्द एक पिलर की तरह काम करता है जो किताब में कुल 10 बार आता है, और इसका मूल शब्द हिब्रू क्रिया यालौद में छिपा है।
तो हिब्रू भाषा के ये यालाद शब्द अपने भीतर क्या अर्थ समेटे हुए हैं? मतलब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है?
यालाद का शब्दिक अर्थ है जन्म देना, उत्पन्न करना या किसी चीज का कारण बनना। डॉक्टर वेनॉय इस शब्द के इस्तेमाल को बहुत स्पष्ट रूप से समझाते हैं। तोलेदुत शब्द कभी भी उस चीज का सारांश नहीं देता जो अतीत में बीत चुकी है। इसके बजाय ये हमेशा इस बात का परिचय देता है कि आगे क्या आने वाला है।
मतलब ये एक फॉरवर्ड लुकिंग शब्द है।
बिल्कुल, जब किसी व्यक्ति या घटना के साथ टोलेडोथ का इस्तेमाल होता है ना, तो वो ये बताता है कि उस व्यक्ति या घटना से आगे क्या ऐतिहासिक विकास हुआ।
ये थोड़ा तकनीकी हो गया। क्या इसे ऐतिहासिक पाठ के किन्हीं ठोस उदाहरणों से समझा जा सकता है, ताकि हमारे सुनने वालों को भी एकदम क्लियर हो जाए?
हाँ हाँ, बिल्कुल, इसे इस तरह देखा जा सकता है। जेनेसिस 11:27 में एक वाक्य आता है, ये 13 की पीढ़ियां हैं।
13।
अब अगर कोई सोचे कि इसके बाद 13 की पिछली जिंदगी की कहानी होगी, तो वो गलत होगा। इस वाक्य के तुरंत बाद अब्राहम की कहानी शुरू हो जाती है।
अच्छा, मतलब 13 से क्या उत्पन्न हुआ, अब्राहम और उसका सफर?
बिल्कुल सही। इसी तरह जेनेसिस 37:2 में लिखा है, ये जैकब की पीढ़ियां हैं, लेकिन इसके बाद की कहानी जैकब के जन्म की नहीं है।
तो फिर किसकी है?
वो उसके बेटे जोसेफ और उसके भाइयों की है, जो मिस्र जाते हैं और एक नया इतिहास रचते हैं।
अरे वाह, ये तो एक जबरदस्त आहा मोमेंट है। इसे एक परिवार के पेड़ या फैमिली ट्री की उपमा से बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है।
हाँ, फैमिली ट्री बहुत अच्छा उदाहरण है।
है ना? जब हम किसी पुराने पेड़ के तने को देखते हैं, तो हमारा ध्यान सिर्फ उस तने की छाल पर नहीं रुक जाता, हम उन नई शाखाओं को देखना चाहते हैं जो उस तने से निकल रही हैं। तो जेनेसिस 2 उस नई शाखा की शुरुआत है।
बिल्कुल।
मतलब जेनेसिस 2.4 का अर्थ ये कतई नहीं है कि आसमान और जमीन कैसे बने, बल्कि इसका अर्थ ये है कि उनके अस्तित्व में आने के बाद उनसे क्या उत्पन्न हुआ, यानी ये मानव इतिहास की शुरुआत है।
यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा निष्कर्ष है। जेनेसिस 2 पीछे मुड़कर देखने वाला कोई डुप्लीकेट विवरण नहीं है, यह एक प्रगति है, एक फॉरवर्ड मूवमेंट है।
हाँ, एक जूम इन इफेक्ट।
बिल्कुल, ये जेनेसिस 1 के विशाल कैनवस से निकलकर एक विशिष्ट बिंदु पर फोकस कर रहा है। लेकिन ये प्रगति एक और गंभीर सवाल खड़ा करती है। अगर जेनेसिस 2 आगे की ओर देख रहा है, तो ये किस बड़ी घटना के लिए जमीन तैयार कर रहा है?
अगर कहानी के प्रवाह को देखा जाए ना, तो जेनेसिस 2 स्पष्ट रूप से जेनेसिस 3 के लिए एक मंच तैयार करता नजर आता है, जहां मतलब मानव इतिहास की सबसे नाटकीय घटना घटती है, मनुष्य का पतन या फॉल ऑफ मैन।
एकदम सटीक विश्लेषण। जेनेसिस 2 का पूरा ढांचा इस तरह से बुना गया है कि वो इंसान और इस रची गई दुनिया में उसके स्थान, उसकी जिम्मेदारियों को स्पष्ट कर सके,
ताकि आगे की कहानी समझ आ सके।
हाँ, अध्याय 3 की त्रासदी को समझने के लिए ये बैकग्राउंड अनिवार्य है। ध्यान दे कि जेनेसिस 2 में अदन के बगीचे की कितनी सटीक लोकेशन दी गई है। श्लोक 8 से 14 तक 4 नदियों का विस्तार से जिक्र है।
हाँ, और वो सिर्फ भूगोल नहीं है, है ना? वो एक भौतिक यथार्थ की स्थापना है।
बिल्कुल।
और वो सख्त नियम भी तो इसी अध्याय में स्थापित किया गया है। श्लोक 16 और 17 में ज्ञान के पेड़ का फल न खाने की स्पष्ट चेतावनी दी गई है। जिस दिन तुम इसे खाओगे, तुम निश्चित रूप से मर जाओगे।
हाँ, ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है।
इसके बिना तो अध्याय 3 में ईव का उस फल को खाना महज एक घटना रह जाती, कोई बगावत नहीं।
सही कहा। इसके अलावा ईव की रचना का जो विस्तृत विवरण यहाँ मिलता है ना, वो भी बेहद अहम है। जेनेसिस 1 में सिर्फ एक पंक्ति थी कि इंसान को नर और नारी के रूप में बनाया गया।
हाँ, बहुत ही संक्षेप में।
लेकिन जेनेसिस 2 में पसलियों से रचना और उनके बीच के गहरे संबंध का पूरा वर्णन है। ऐसा इसलिए क्योंकि अध्याय 3 में जब प्रलोभन और पतन की घटना होती है, तो उनकी आपसी डायनामिक्स और उस रिश्ते में आई दरार को समझना जरूरी हो जाता है।
ये तो ये किसी थिएटर के नाटक के पहले अंक यानी एक्ट 1 की तरह है। जब मंच का पर्दा उठता है तो दर्शक देखते हैं कि मंच पर बहुत बारीकी से कुछ प्रॉप्स रखे जा रहे हैं। एक हरा भरा पेड़, बहती नदियां और एक सख्त नियम।
आप देखो, एक स्टेज सेट हो रहा है।
कोई भी सोच सकता है कि इस विवरण की क्या जरूरत है। लेकिन जब दूसरे अंक में एक्ट 2 में उन प्रॉप्स के इर्द गिर्द पूरी कहानी का संघर्ष खड़ा होता है, तब वो सेटअप समझ में आता है। जेनेसिस 22.5 में उनका नग्न होना और शर्मिंदा न होना भी ऐसा ही एक प्रॉप या मनोवैज्ञानिक सेटअप लगता है।
ये एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक परत है। अध्याय 2 का अंत इसी वाक्य से होता है कि वो नग्न थे और उनके बीच कोई शर्म नहीं,
जो कि पूर्ण मासूमियत का प्रतीक है।
बिल्कुल, ईश्वर के साथ पूर्ण सामंजस्य का। और ये सीधे तौर पर जेनेसिस 3.7 से जाकर टकराता है। पतन के तुरंत बाद, फल खाने के बाद, उनकी आंखें खुलती हैं, उन्हें अपनी नग्नता का एहसास होता है
और वे खुद को ढकने के लिए अंजीर के पत्ते सिलते हैं।
हाँ, बिना जेनेसिस 2 की उस मासूमियत को स्थापित किए जेनेसिस 3 में आया वो अलगाव, वो शर्म और वो डर कभी समझ में ही नहीं आएगा।
ये तार्किक प्रगति तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई, लेकिन आलोचकों का एक और बहुत बड़ा तर्क है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वे घटनाओं के क्रम यानी क्रोनोलॉजी में एक भारी विरोधाभास की ओर इशारा करते हैं।
हाँ, ये एक आम बहस है।
मतलब जेनेसिस 1 कहता है कि पहले वनस्पति बनी, फिर जानवर बने और सबसे अंत में इंसान। लेकिन जब जेनेसिस 2 पढ़ा जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि इंसान पहले बन गया, फिर वनस्पति उगाई गई और फिर जानवर बनाए गए। ये तो स्पष्ट रूप से उल्टा है। इसे कैसे सुलझाया जाए?
ये वो क्षेत्र है जहां अनुवाद की सीमाएं और प्राचीन भाषाओं की अपनी प्रकृति सामने आती है। डॉक्टर विनॉय इसके 2 मुख्य समाधान पेश करते हैं।
अच्छा, पहला समाधान क्या है?
पहला समाधान बहुत ही सीधा और पाठ्य आधारित है। जेनेसिस 2 में पूरी पृथ्वी की वनस्पति की रचना का वर्णन है ही नहीं।
अच्छा।
वहाँ स्पष्ट रूप से एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में इंसान के लिए बगीचा लगाने का जिक्र है। पूरी दुनिया में जंगल उगाने और एक छोटा सा बगीचा लगाने में बहुत अंतर है ना?
ये लॉजिक तो समझ आता है कि ब्रह्मांडीय रचना और एक लोकल बगीचे की व्यवस्था 2 अलग बातें हैं, लेकिन फिर भी भाषा का वो विरोधाभास तो बना रहता है। दूसरा समाधान क्या है?
दूसरा समाधान हिब्रू क्रिया रूपों यानी वर्ब फॉर्म्स की जटिलता से जुड़ा है। अंग्रेजी या आधुनिक भाषाओं की तरह प्राचीन हिब्रू में पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के बीच कोई बहुत स्पष्ट लाइन नहीं होती।
अच्छा, मतलब कोई साफ लाइन नहीं है?
बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से वाक्य के कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है कि कोई घटना पहले ही हो चुकी थी या अभी हो रही है। अगर किंग जेम्स वर्जन्स जैसे पुराने अनुवाद पढ़े जाए ना, तो वहाँ लिखा है कि ईश्वर ने बगीचा लगाया और जानवर बनाए।
हाँ, जो पढ़ने में ऐसा लगता है जैसे इंसान के बनने के बाद ये काम हुआ है।
बिल्कुल, जो जेनेसिस 1 से टकराता है।
और यहाँ थोड़ी शंका उठना स्वाभाविक है। अगर आधुनिक अनुवादक आकर उन शब्दों को हैड प्लांटेड या हैड फॉर्म्ड कर देते हैं, जैसा कि NIV में किया गया है, तो क्या ये अपनी सुविधा के अनुसार अनुवाद के नियमों को मोड़ने जैसा नहीं है? मतलब महज एक विरोधाभास से बचने के लिए टेंस बदल देना, क्या ये चालाकी नहीं है?
ये एक बहुत ही तीखा और जरूरी सवाल है, लेकिन भाषा विज्ञानियों का तर्क है कि ये किसी तरह की चालाकी नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, हिब्रू का वो विशेष क्रिया रूप दोनों तरह के टेंस का काम कर सकता है। अनुवादकों का काम सिर्फ शब्दों को डिकोड करना नहीं है ना, बल्कि लेखक की मंशा और व्यापक संदर्भ को समझना भी है। अगर लेखक ने जानबूझकर जेनेसिस 1 और जेनेसिस 2 को एक साथ रखा है, तो क्या ये कॉमन सेंस नहीं है कि वो एक ही पन्ने पर दो बिल्कुल विरोधी बातें नहीं लिखेगा?
हाँ, ये बात तो है।
अनुवादक उस अर्थ को चुनता है जो पूरे ग्रंथ के साथ सामंजस्य बिठाता हो।
ये बात सोचने पर मजबूर करती है, कोई भी चतुर लेखक या संपादक जानबूझकर ऐसी बचकानी गलती नहीं करेगा।
इसी सिलसिले में जाने माने विद्वान डेरिक किडनर के एक लेख वेट और ड्राई का संदर्भ भी बहुत अहम है। वे जेनेसिस 2.56 की तुलना जेनेसिस 1.2 से करते हैं।
उसमें क्या खास है?
जेनेसिस 2 में लिखा है कि पृथ्वी पर अभी कोई पौधा नहीं था और बारिश नहीं हुई थी। किडनर बताते हैं कि यह कोई सामान्य सूखापन नहीं है, बल्कि यह वही प्रारंभिक अराजक स्थिति है जो जेनेसिस 1 की शुरुआत में भी थी। ये एक अभी तक नहीं यानी नॉट येट की अवस्था है।
अच्छा, मतलब ये फिर से इसी बात की पुष्टि करता है कि जेनेसिस 2 कोई अलग कहानी नहीं बल्कि उसी बड़े कैनवास का एक फोकस हिस्सा है।
बिल्कुल सही।
ठीक है, अगर ये मान लिया जाए कि बगीचा इंसान के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया था और ये कोई विरोधाभास नहीं है, तो फिर इतिहास और भूगोल का वो सबसे रोमांचक सवाल उठता है, ये बगीचा असल में था कहाँ?
हाँ, द सर्च फॉर ईडन।
अच्छा, जेनेसिस 2 में चार नदियों का जिक्र है, टिग्रिस, यूफ्रेट्स, पिशोन और गेहोन। अब टिग्रिस और यूफ्रेट्स तो आज भी मेसोपोटामिया के इलाके में बहती हैं, लेकिन बाकी दो नदियां पुरातात्विक दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य हैं।
ये एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से खोजकर्ताओं को आकर्षित किया है। पिशोन और गेहोन का कोई स्पष्ट सुराग आज के नक्शों पर नहीं मिलता। इस पर विद्वानों के बीच मुख्य रूप से तीन अलग अलग दृष्टिकोण हैं।
तो पहला दृष्टिकोण क्या है?
पहला दृष्टिकोण जल प्रलय या फ्लड से पहले के भूगोल का समर्थन करता है। इस सिद्धांत के अनुसार एक समय ऐसा था जब ये चारों नदियां फारस की खाड़ी के क्षेत्र में कहीं एक साथ मिलती थीं।
अच्छा।
लेकिन एक भयंकर महाप्रलय ने उस पूरे इलाके का भूगोल बदल दिया और आज वह मूल स्थान पानी के मीलों नीचे कहीं दफन है।
यह तो किसी खोए हुए शहर की तरह हो गया जिसे अब कभी ढूंढा नहीं जा सकता। और दूसरा दृष्टिकोण क्या कहता है?
दूसरा दृष्टिकोण मानव मनोविज्ञान और नामों के दोहराव पर आधारित है। ये मानता है कि एक महान जल प्रलय या विस्थापन के बाद जो लोग बचे ना, उन्होंने पुरानी दुनिया की यादों को जिंदा रखने के लिए नई नदियों को अपनी पुरानी नदियों के नाम दे दिए।
ओहो।
इसका सीधा सा मतलब ये है कि आज हम जिन टिग्रिस और यूफ्रेट्स को जानते हैं, वो शायद अदन के बगीचे वाली मूल नदियां हैं ही नहीं। उन्होंने बस पुराने नाम उधार लिए हैं, इसलिए भौगोलिक स्थिति का पता लगाना लगभग नामुमकिन है।
यार, ये दूसरा दृष्टिकोण बहुत ही दिलचस्प और मानवीय लगता है। मतलब इतिहास गवाह है कि जब इंसान प्रवास करता है तो वो अपनी पुरानी दुनिया के नाम अपने साथ ले जाता है।
बिल्कुल ले जाता है।
अमेरिका में न्यूयॉर्क या न्यू इंग्लैंड इसके जीते जागते उदाहरण है। प्राचीन काल के विस्थापित लोगों ने भी शायद उस खोई हुई शांत दुनिया, उस अदन के बगीचे की यादों को सहेजने के लिए बिल्कुल यही किया होगा।
ये एक बहुत ही शानदार तुलना है जो मानव स्वभाव की सच्चाई को सामने लाती है। लेकिन इस बहस में एक तीसरा दृष्टिकोण भी है जो इतिहास और भूगोल की चिंताओं से पूरी तरह आजाद है।
वो कैसे?
यह रूपकात्मक दृष्टिकोण है, यानी मेटाफोरिकल व्यू। विद्वान जेसी गिब्सन जैसे लोग मानते हैं कि अदन नाम की कोई भौगोलिक जगह कभी थी ही नहीं जिसे नक्शे पर ढूंढा जा सके।
एक सेकंड, तो अगर ये कोई भौतिक स्थान नहीं है तो फिर ये पूरा विवरण है क्या?
गिब्सन इसे एक मन का बगीचा कहते हैं। उनके नजरिए में यह कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है बल्कि एक गहरी दार्शनिक कथा है। उनका मानना है कि एडम कोई एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है बल्कि वह हर इंसान का प्रतीक है।
अच्छा, हर इंसान का?
हाँ, वो बगीचा उस आदर्श और शांतिपूर्ण स्थिति का प्रतीक है जहाँ हर इंसान होना चाहता है, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण हर इंसान हर रोज उस प्रतिबंधित फल को खाता है और उस शांति से निष्कासित हो जाता है।
यह दृष्टिकोण तो ये तो पूरी कहानी को ही एक गहरे मनोवैज्ञानिक रूपक में बदल देता है। यह इतिहास नहीं बल्कि मानव स्वभाव का दर्पण बन जाता है।
बिल्कुल, और डॉक्टर विनोई ये स्पष्ट करते हैं कि कोई व्यक्ति किस दृष्टिकोण को अपनाता है ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो इसे किस नजरिए से पढ़ रहा है। क्या वो इसे वास्तविक इतिहास मानता है या महज एक प्रतीकात्मक कथा।
हाँ, ये पाठक पर है।
एक विश्लेषक के तौर पर
ये समझना सबसे महत्वपूर्ण है कि एक ही पाठ को कितनी अलग अलग गहराइयों से पढ़ा और समझा जा सकता है।
ये चर्चा सचमुच उन बंद दरवाजों को खोलती है जिनके बारे में अक्सर सोचा ही नहीं जाता। तो अगर इस पूरी लंबी और गहन चर्चा के सूत्रों को एक साथ समेटा जाए तो हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं।
शुरुआत में वो सवाल था कि क्या जेनेसिस 2 महज एक डुप्लीकेट विवरण या संपादन की गलती है।
हाँ,
और अब ये बिल्कुल साफ होता जा रहा है कि ऐसा मानना जल्दबाजी और पाठ की सतही समझ का परिणाम होगा, है ना?
यह निष्कर्ष बिल्कुल सटीक है। जब हम मूल हिब्रू शब्द टोलेडोथ के अर्थ को समझते हैं जो हमें पीछे नहीं बल्कि आगे की ओर ले जाता है, जब हम हिब्रू क्रियाओं के अनुवाद संबंधी जटिलताओं को ध्यान में रखते हैं, और जब हम यह समझते हैं कि अध्याय 2 दरअसल अध्याय 3 की त्रासदी के लिए मंच तैयार कर रहा है, तो सारे विरोधाभास छूमंतर हो जाते हैं। तब ये एक तार्किक प्रगति नजर आती है।
हाँ, एक लॉजिकल प्रोग्रेशन।
जेनेसिस 1 एक वाइड एंगल लेंस से पूरे ब्रह्मांड को बनाता है और जेनेसिस 2 अचानक कैमरे को जूम इन करके इंसान, उसकी आजादी और उसके संघर्षों पर ले आता है।
और शायद यही वो बिंदु है जहां हजारों साल पुरानी ये बहस आज के आधुनिक दौर के लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। कोई भी सुनने वाला ये सोच सकता है कि प्राचीन हिब्रू शब्दों के अर्थ या पुराने अनुवादों पर इतनी माथापच्ची करने का आज के युग में क्या लाभ है।
बिल्कुल, ये सवाल उठ सकता है।
लेकिन ये सिर्फ एक पुरानी किताब का विश्लेषण नहीं है, यह असल में इस बात की एक केस स्टडी है कि मनुष्य जानकारी को कैसे प्रोसेस करता है।
मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जब किसी चीज को सतही तौर पर पढ़ा जाता है ना, तो जो चीज एक स्पष्ट गलती या विरोधाभास लगती है वो संदर्भ, भाषा की गहराई और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने के बाद एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर बन जाती है।
बिल्कुल,
आज के इस इन्फॉर्मेशन ओवरलोड वाले युग में जहां अक्सर महज हेडलाइंस पढ़कर धारणाएं बना ली जाती हैं, ऐसी ही क्रिटिकल थिंकिंग और गहराई में उतरने की प्रवृत्ति की सबसे ज्यादा जरूरत है।
एकदम सही कहा आपने। किसी भी विषय पर त्वरित राय बनाने से पहले थोड़ा रुकना, उसके संदर्भ को खोजना और उसके पीछे की परतों को समझना, यही एक सच्चे अध्येता की निशानी है। यह चर्चा उसी दिशा में एक बेहतरीन कदम है।
ऐतिहासिक साहित्यों का शायद सबसे बड़ा मूल्य यही है। वे ये सिखाते हैं कि सच्चाई अक्सर सतह पर तैरती हुई नहीं मिलती बल्कि उसे परतों के नीचे से खोजना पड़ता है।
यह एक बहुत ही सशक्त विचार है, और इसी विचार के साथ इस चर्चा को एक ऐसे रहस्यमयी सवाल के साथ विराम दिया जा सकता है जो सोचने पर मजबूर कर देगा।
अच्छा, वो क्या है?
नदियों के पुराने नामों को नई जगहों पर इस्तेमाल करने वाले उस सिद्धांत के बारे में जरा गहराई से विचार किया जाए। अगर प्राचीन मानव सचमुच किसी महाप्रलय या बड़े विस्थापन के बाद अपनी पुरानी खोई हुई दुनिया के नामों को नई दुनिया की नदियों, पहाड़ों और शहरों पर थोप रहे थे, तो आज के आधुनिक नक्शों में ऐसे कितने नाम मौजूद होंगे जो असल में किसी और ही भूली बिसरी दुनिया की याद दिलाते हैं? क्या यह संभव है कि आज जिस भूगोल को परम यथार्थ मानकर जिया जा रहा है वो किसी बहुत पुरानी खोई हुई सभ्यता का महज एक रिसाइकल नक्शा हो?
ओहो, ये तो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है।
है ना? सुनने वालों के लिए बस यही कहूंगा, अगली बार जब दुनिया का नक्शा सामने हो तो इस बारे में जरूर सोचा जाए।